Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another edition of Celebrating Sweet Success at IOBM. I'm your host, Abrar Ahmed Khan, in which we are going to be talking about our illustrious alumni who have done great in terms of their work achievement as well as in life. Let's talk about our current guest. My guest is Maheen Salman. Maheen possesses over 23 years of experience both at transitioning from multinationals to the entrepreneurial journey. Currently, she is leading a global Innotrix technology as a CEO and founder, as well as the managing director for Pestagon Enterprises. Notable roles of Maheen include senior vice president, former at Kurangi Association of Trade and Industry, KATI, chairing various committees and a presidential nominee of the Rotary Club of Karachi Cosmopolitan. Committed to entrepreneurial pursuits, she pursues a PhD, chairs advisory boards, and fosters industry-academia collaboration, notably through initiatives like the Dr. Samiu Zaman Research Memorial Lab at the University of Karachi, aiming to promote indigenous raw material development for industrial and academic uplift. On a personal note, she was a senior of ours at the IOBM Pursuits while it was CBM. Maheen not only scored the highest GPA gold medal at IOBM, but also was one of the top candidates for major achievements across her career. She currently sits on six board and advisory positions in different institutes in Auric, as well as multiple board positions across different industries. Maheen, welcome to the show.
Thank you, Brar.
How are you doing, Maheen?
Wonderful, alhamdulillah.
How's your journey been so far, Maheen?
It's wonderful. It's very nice. I mean, starting from college and then, you know, crossing the college over and then sitting here as an alumni where I'm not still able to decide if I'm an alumni or not because I'm still pursuing my PhD from the same college. So, I mean, it's a wonderful journey. I had a nice time. CBM is like a part of my life. CBM has become a part of my life. And like, you know, I still remember when we came here, we were the second batch of this institute. So we are really close to the management. Allah Jannat Naseeb Kare, Hamare Shah Jahan Kareem Sahab Ko, Mrs. Shah Jahan Kareem Ko. We were all like, you know, a family. Together, I still remember the days jab barish ke andar hum log sare cricket ek saath khela karte the. I mean, we used to drag them as well. But you know, knowing CBM from those days and now sitting here in front of you, talking about how it has grown and how we have grown together, it feels like, you know, a big achievement to me in my life.
MashaAllah, 23 years.
Now 24, and we are in 2024. So I'm a graduate of December 99.
And you're still pursuing your PhD from the institute.
Yes.
MashaAllah. So you haven't left that.
No, I haven't. Because I feel that, you know, Abrar, as we grow and with our children, then we have to plan something for ourselves as well. I mean, I'm not the kind who can sit at home and, you know, saying goodbyes to when they come and they go. You know, I can't do that. I have to have something of my own in my life. Mm-hmm. And for that, I feel, you know, PhD came pretty accidentally in my life. I was again associated with IOBM for a USAID project when they all took us to Bhurban for a training. And I was with IOBM faculty at that time, and also people from other walks of life who were, you know, going, who were attached, associated as trainers to the program. And that's when, you know, it came up that, you know, we should do PhD, we should pursue something big in our lives. And my youngest daughter was 4 at that time. Alhamdulillah, she's 14. So during this time, I took it with ease on myself as well. So with her schooling and now that her college would be starting soon, you know, I finished my MPhil and then pursued my PhD. And a lot of people ask me, why are you doing it when you don't have to end up as a professor? Fine, very true. I'm not, you know, a pure academic person where I will be going out and, you know, teaching people. I may not be a professor, but, you know, when you are associated with academics, it opens up your heart and your mind, and at soul you feel so fresh because you are always, you know, with the young brains, you are with the young children, you are with new ideas, you are full of life. Mm-hmm. And the other part is it grows you professionally as well, because I was able to open up a lot more dimensions in my life pursuing this PhD, because back in 2019 when I selected the topic that was on entrepreneurship and startups, there was practically no talks of startups or entrepreneurship in Pakistan. Over a span of 5 to 6 years now, if you would see, everybody is talking of startups. Startups has become a buzzword out here.
Oh yes.
So, you know, things have evolved, and with that I have also evolved. I have opened up my own technology company as it has evolved with my PhD, you know. So, it's not only any academic benefit, it grows you professionally and personally as well. So, I like to be associated with academics. Maybe not as a professor, but I go to various institutes as visiting faculty. I do mentoring for a lot of students. Mm-hmm. I'm involved with them with incubation, and I guide them with the new ideas. So far I have scaled up 2 to 3 startups from the platform of Kati. So it feels really nice when, you know, children come back and they say, okay, you know, thank you so much, you guided us in such and such way, and now we have achieved this and this in life. So it gives you a sense of achievement as well.
Very reassuring, very reassuring. Mm-hmm. And tell us about your journey, Maheen, mm-hmm. at IOBM.
Okay, IOBM was real fun because, you know, when we started somewhere in 2000s and 1999, you know, 98, 90, I joined IOBM in 1996 for my bachelor's. So that was an era when we were, mentally groomed, not by IOBM, but by our own environment, that, you know, mm-hmm. we have to end up in a multinational and we have to be, you know, brand managers, and we have to be, you know, something big in a multinational company. So that's how we were trained. But at that time, IOBM was, you know, totally focused on grooming an executive class out of its own students, because that was the need of that era. So with that, you know, we had a lot of fun over here, and the studies, like IOBM was a second home, you would say, you know. We would come here, and I'm sure you remember all the fun that we had together.
Well, you were the senior batch.
Yes, we were the senior batch.
And
true. And, you know, we had so many seminars, organizing things, exhibitions, and I mean, considering that era, I don't really see much change that has come with the students. I mean, obviously the technology has changed, the aura of it has changed, but the basic things would remain the same. Like, we were doing good according to our resources and capacities, and today things have, you know, changed because of the differences in technologies that have evolved, the various methods of teaching that has evolved, and today I see IOBM as a very, very progressive institute which has been able to change itself according to the environment. From a job mindset, today the mindset is of entrepreneurship. Mm-hmm. And this shows the progression of this institution, that how it has grown and how we have grown and evolved with it over time. So, because I remember when I graduated, then my convocation was somewhere in November or December 99, and on 1st January 2000, I was appointed by then Park Davis, which is now Pfizer Pakistan.
True.
So,
true.
You know, you're from IOBM, then you are in a multinational,
straight,
so all dreams coming true.
Mm.
But then later on, when I had my children, and since I was in marketing, so I had to travel internationally and locally. So it became a bit challenging. So I thought, okay, I'll quit for a while, and then later on I'll join and go back to the job again. But what happened was, after my second child, I all of a sudden realized that, listen, I cannot be bossed. I'm my own boss.
Mm-hmm.
So somewhere that entrepreneur hidden inside me all of a sudden came out, because mm-hmm. I had always been a torture to my bosses because I could not really comply to what they would say. I had a mind of my own. अब अगर वो कहे कि दिन को रात, रात को दिन, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, यू नो. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर देम.
एंड स्मार्ट माइंड एज वेल. आई मीन यू वर द गोल्ड मेडलिस्ट एंड द जीपीए 3.8.
उस जमाने में मैं आपको बताऊं हो रहा क्या था. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर खुद एक चेंज आ रहा था. लाइक पहले वहाँ पे बिजनेस यूनिट हेड वॉज अ बिजनेस यूनिट हेड, यू नो, ही वॉज लाइक एन एंटरप्रेन्योर. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर एंटिटी. वो बजट्स भी बनाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी देखेगा, सब कुछ करेगा. उसकी बहुत सारी स्किल्स बाहर आती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ कंपनीज यू नो स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्राम द मैनेजर्स. और वो जो हमारा एक जुमला होता है ना, लकीर के फ़कीर, तो ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड I stayed at home for around 2 years because I was having children. So I stayed at home for around 2 years, and after that, when I wanted to join back, I just suddenly realized that यार ये तो लकीर का फकीर बना रहे हैं, दिमाग बंद कर रहे हैं, मेरी capabilities ख़त्म हो रही हैं. बस मैं सिर्फ इस department की हद तक restricted हूँ. You know, I cannot think beyond that. I cannot take a lot more responsibilities beyond this. And if I'm not taking responsibilities, I'm killing myself intellectually. So I decided not to go back for a job. So the first thing that I did, I passed the exam, PM, Project Management Professional. I'm a PMP. And I started my own trainings company. I went to Dubai. I had a liaison with another training company and I started my own trainings. Later on, I realized that this is also not my piece of cake because I'm sick and tired of trainings. But training suited me at that time when my children were small, you know, we are growing together. So they gave me the flexibility, and then I realized that, okay, now it's time and I should go back to my family business, which is of fumigations and of chemicals and of environment. So I went back to my family business. I started working there, and from there on I started evolving my own consultancies related to project management. And other than project management, now it's all about technologies, where I am focusing more on incubation and I'm focusing on scaling up of startups, and I am now focusing on, you know, commercializing of technologies. So I have also changed with the need of the era, you know,
which is very important.
Yes.
Which is very important,
because if you are not doing that, then you are dying out.
Coming from a family, Maheen, in which you always you had a father figure who was always, you know, who had mashallah done so good in business. Your brother went into his business as well, also explored some multinational roles. Did that some of the other encourage you to kind of pick your own self up? And
yes, maybe, because you know, at the end of the day, if you have something in front of you, like if you have a family business in front of you, then you cannot stay away from it for a long time.
You had those germs, right?
Yes.
So you wanted to kind of explore, and
it all started from my father, because my father was in PCSIR doing a wonderful job, and you know, all of a sudden, out of the blue, while we were still in school, he took early retirement. And this I'm talking about 1980s. So that was the time when, you know, job was like life, and people were like, you're finishing your life, you're taking early retirement. Aapki pension ka kya hoga, aapke iska kya hoga, uska kya hoga. And then he's like, no, I can foresee, at that time in 1980s, he said, I can foresee that my salary is not going to match the needs of my family. Today we realize, you know, how right he was. A job will not support the needs of the family. Alhamdulillah, all five of us studied from the most prestigious institutions of the city. And if I go back and see, then yes, very true, the salary would not support our education even. So today, you know, it's not about money. For me, business is also about, you know, how you grow yourself as well. Because I mean, job is fine, wo hota hai na, abrar har ek ka apna mizaj hota hai, you know. Some people are really happy with the job, so they have that thing. But somebody like me, who loves to try out something new, who wants to explore, who wants to have some kind of adventure, you know, baap ke paise mein to bahut adventure ho jate hain na. Like, you know, I also did a lot of adventures. I imported a lot of materials, I tried to produce a lot of new products. Some were successful, some were not successful, but you know, I always had that, you know, venture thing in my mind, you know, I have to do something. So finally, after, you know, a lot of experiments that I've done in my life, I have come and let's see for how long I have settled down with the technology thing.
So, I think technology is the right place to be.
Yes,
I think for the next 5-10 years.
Because that's, you know, it gives me a lot of room for experimentation.
Mm-hmm.
It gives me a lot of room for growth. It gives me a lot of room for, you know, new ventures to grow with time. So, I, alhamdulillah, feel that I will not get old with time, you know, I'll stay young.
And it's
young.
The need of the hour as well, Maheen.
Yes, it's the need, you know, of the hour.
The country needs it, the economy needs it.
Yes, very true.
And for all the right reason, I mean,
very
true. That's the place to kind of make money. Mm. Right?
Yes, because I'm really, you know, struggling with the universities right now. I am trying to practically bridge the gap between academia and industry, and that is all out of passion.
Mm-hmm.
I'm not really making money out of it right now.
Okay.
But, you know, it's purely out of passion.
So we're looking at 6 AURIC positions.
Right.
You mentioned almost 4 to 5 board positions, advisories.
Yes.
UNDB projects,
mm-hmm.
USAID projects.
Yes.
This is all pro bono.
Yes.
Wonderful. What is something that you can see across all organizations, the AURICs, that you see as a major opportunity?
I really want to transform them. Right now, I'm pitching the idea of holding companies.
Mm-hmm.
Out of like around 200 active universities in Pakistan, only 4 to 5 companies have holding companies. So now I'm trying to, you know, push them to develop their own, you know, form their own holding companies. And I'm going to help them set up their incubation centers with faculty-led startups. So once your faculty become, you know, the entrepreneur,
mm-hmm.
then, you know, everything around you is going to be, all your innovations are going to be commercialized automatically. I've already suggested to the HSC that, you know, when you talk about publication of papers, your faculty is all into publications. Now you tie the, I don't know if some people really don't like the idea, but mm-hmm. you know, you have to do it. If you tie the promotion of faculty with commercialization of technologies, of innovation, then you can see a drastic change in the entire academic scenario of Pakistan.
So don't let them just be a teacher.
Yes.
Get them to actually
deliver,
know, venture out and fly.
Yes. Once your faculty starts venturing out, mm-hmm. your students will automatically be, you know, they cannot be less than students from Harvard. They cannot be students from less than MIT.
Mm-hmm.
So one technology student will not stay with the company for more than a year.
Mm-hmm.
If you have your own in-house holding company, you don't even have to go out to companies and ask for internships. Because a lot of children come to me and a lot of universities approach me for internships.
Yeah.
And I cannot offer internships because the mindset of industries is like, ke yaar, please free mein bhi in logon ko mat bhejna. Ye hamara bahut waqt zaya karte hai. तो जब आपके पास इनहाउस कंपनीज होंगी, आपके बच्चे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, प्रोजेक्ट लीड आपकी फैकल्टी होगी, उस बच्चे के पीछे इंडस्ट्री मर रही होगी कि ये बच्चा मुझे दे दो. अभी भी एनएडी का जो साइबर सिक्योरिटी का डिवीजन है, जहाँ पे वो ऑलरेडी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं. लास्ट ईयर के अंदर वो बच्चे पिक हो जाते हैं एनएडी के, एंड लास्ट ईयर से ही उनकी जॉब्स पक्की होती हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव एस्टैब्लिश दिस होल लैब एंड द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ इवन बिफोर दे ग्रेजुएट. सो समथिंग लाइक अ MIT मॉडल, समथिंग लाइक अ हार्वर्ड और स्टैनफर्ड मॉडल, तो उधर वो बच्चे पिक हो जाते हैं. सो मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला मॉडल जो है मैं तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश कराऊँ.
And that is something that, do you actually reflect back and see it at IOBM as well?
Yes, definitely. IOBM is my life, you know. I'm still associated with it. So, yahan pe bhi definitely aapke AURICs ke saath bhi I am on board with them. Aur yahan pe to bahut maze maze ke kaam ho rahe hain. Like, you are also working on agriculture. IOBM ka jo hamara incubation center hai, I have seen olive farming over here. And I have seen a lot of startups coming up over here, which, I mean, are fascinating. So why not? Matlab, agar yahan pe bhi apni ek holding company ho, aur uske andar ye sare startups grow kare, to self-sustainable, because I always believe in a self-sustaining model, self-financing model, self-sustaining model. Aapko kisi ke paas jaake haath nahi phailana ki ye hame de dein, hame ye funding de dein. I mean, you don't need funding. आप अपना सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जब आप जनरेट कर लेंगे ना, आप खुद वो कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेंगे कि आप न सिर्फ अपने पैसे जनरेट करके कर रहे होंगे बल्कि आप यूनिवर्सिटी को भी कमा के दे रहे होंगे और इंडस्ट्री आपके पीछे भाग रही होगी क्योंकि वो देख रही होगी कि आपकी कैपेसिटीज़ हैं टू प्रोड्यूस प्रॉफिट और इंडस्ट्री का काम प्रॉफिट बनाना है. अगर वो इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं बनाती तो वो इंडस्ट्री कहलाने के लायक नहीं होती. तो वो आपको जब देखेगी ये सारे काम करते हुए तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके बच्चों के पास आएगी.
Very interesting.
वो आपके बच्चों को खुद ब खुद हायर करेगी. So these are the things that I'm working on right now.
And how open are the universities, the industries open to this thought?
Industry is pretty open to this thought.
Right.
क्योंकि industry के लिए एक startup का failure बच्चा ज़्यादा माने रखता है. बजाय उस बच्चे के जो कहीं पे 3 महीने की internship करके आया हो. अगर आपका बच्चा startup failure भी है ना, उसकी बहुत अच्छी नौकरी हो जाएगी. This I can assure you.
I think it's setting the direction and the right KPIs.
Yes, it's the it's how you focus on the things. I mean, हमारे यहाँ जो एक mindset develop हो गया, what I see is के we don't have this, we don't have that, we need funding, we need resources. You don't need anything. If you are a practical person, all you need is the mindset for resource generation. You will generate your own resources. You will develop your own funding. Because when children come to me, I don't send them out to the banks. वो स्टेट बैंक के डंडे से आपको कहते हैं कि आप हमसे लोन ले लो और हम SME जनरेशन करेंगे. उनके अपना एक अलग चीज़ चल रही है, राइट? तो उनको स्टेट बैंक के डायरेक्टिव्स हैं, स्टेट बैंक के कुछ टारगेट्स उनको मीट करने हैं, उसके एवज उनको आपको कुछ फंडिंग करनी है. बट आई हैव नेवर सीन दैट फंडिंग वर्किंग आउट बिकॉज दैट फंडिंग्स कम्स विद इंटरेस्ट, दैट फंडिंग कम्स विद कोलैटरल, दैट फंडिंग्स यू नो कम विद अनदर थिंग. देयर वर 3 things आई वॉज you know really fighting against. One was collateral, one was interest, and I'm forgetting the third one. But you know, all these 3 things will not help the children grow. They will not help the small businesses grow. I've been working with the small businesses, so I never encourage them to go to the banking sector. They have a lot of other ways to generate funds. I connect them with the industry, I connect them with the investor, I help them with crowdfunding, I help them with generation of revenues from the from their family and friends. आपका सबसे बड़ा example आपके IOBM के बच्चा बिलाल है जिसने 3D printing का startup करा and without seeking funds from a single financial institution, mashallah, he is he is actually gone abroad and setting up a plant in Germany. So this is your own IOBM startup. The only thing I helped him with was connecting him with the right people at the right time.
Wonderful.
That's all that I did.
Wonderful.
So, this is how you can help children grow. So, हमारे यहाँ मैं जो एक और चीज़ जिसके ऊपर काम कर रही हूँ, that is changing the mindset from resource seeking to resource generation. You have a lot of resources around you. You just need to generate them. You need to find out ways and means of generating the resources around you and being successful.
Was there something that we learned at IOBM?
Oh yes, wonderful. हमारे यहाँ तो टीम वर्क के ऊपर बड़ा जोर होता था. क्रॉस फंक्शनल टीम्स थी, टीम्स हर चीज़ में हमारे यहाँ टीमिंग होती थी. आई स्टिल रिमेंबर द मेला एंड आई स्टिल रिमेंबर मिस सबीना मोहसिन बाइंग माई 1 leg ऑफ बिरयानी विच वॉज माई वेरी फर्स्ट वेंचर एट द IOBM. हमने कहा कि मेला था तो हमने भी बिरयानी वहाँ पर रख ली एंड वो हमारी एक डेग तो ख़त्म हो गई थी, एक रह गई थी. अब हम बहुत उदास थे कि हमें लॉस हो गया तो मैं सबीना मोहसिन परचेज द एंटायर थिंग. सो आई मीन वो अगेन यू सी दिस इज द वे IOBM हैज एक्चुअली ग्रूम्ड अस टू हेल्प आवर सेल्व्स. हमें इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती थी. कभी हम मेले में पार्टिसिपेट करते थे, कभी हम कोई इवेंट्स होते थे उसके अंदर. आई रिमेंबर यू वर ऑलवेज ब्रिंगिंग स्पॉन्सर्स एंड कंडक्टिंग फंक्शंस वेरी सक्सेसफुली. सो दैट वॉज ऑल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दैट वी वर गेटिंग इन दिस इंस्टीट्यूट एंड दिस इज़ एक्चुअली पेइंग अस बैक. Today, if I'm talking of resource generation, then I've learned that at IOBM.
Yeah.
How to generate the resources, how to conduct your own programs, and how to actually execute them. Bas students ko yahi cheez chahiye hoti hai, ki wo practically cheez ko execute kare hue ho. तो वो चीज़ आपका CBM जो है ना, आई मीन इट्स रियली ग्रेट, इट जनरेट्स दैट. बल्कि मेरे पास और सजेशंस भी हैं, यू नो, इवन CBM कैन ओपन इट्स ओन सॉफ्टवेयर हाउस. वही जो मैंने आपसे होल्डिंग कंपनी की बात करी, इफ़ CBM गोज़ फॉर अ होल्डिंग कंपनी, यू हैव योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस, आप अपने बच्चों को इन हाउस इंटर्नशिप्स दें.
वट वुड बी माइंड द की डिफरेंस बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इंक्यूबेशन सेंटर?
ओके, होल्डिंग कंपनी को सपोर्ट, होल्डिंग कंपनी सपोर्ट्स योर इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली. इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, छोटी छोटी कंपनीज उसमें आती हैं एंड यू नर्चर देम, लाइक यू नो, आप उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल डेवलप करते हैं, उनका ह्यूमन, उसमें ह्यूमन कैपिटल आता है, आप वो डेवलप करते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप तक ले आते हैं, वेयर दे आर रेडी टू स्केल इनटू एन एंटरप्राइज.
यू गिव देम एक्सपोजर, यू ब्रिंग इन सम स्पॉन्सर्स, VCs, एंड
बिल्कुल VCs आप लेकर आते हैं, करते हैं. अच्छा, अब होल्डिंग कंपनी इज द फैसिलिटेटर,
राइट,
उसके शेयर्स होते हैं,
okay.
वो इनको फिर फर्दर फाइनेंस अगर चाहिए तो वो कर रही होती है.
ओके,
और उनके बाद उसकी अर्निंग में से अपना एक पोर्शन वापस ले रही होती है, यू नो, समथिंग लाइक एन इन्वेस्टर इनटू द बिजनेस,
समथिंग लाइक अ VC,
समथिंग लाइक अ VC,
ओके,
नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक अ VC. तो वो उसमें उनको एक तरीके से कह लें धक्का स्टार्ट कर देती है. व्हेन दे स्टार्ट रनिंग, सो यू नो द होल्डिंग कंपनी टेक्स इट्स,
दे रिकवर देयर शेयर्स,
दे रिकवर देयर शेयर्स, एंड देन या तो वो आपको IPO करा देते हैं, या फिर वो आपको इनटू, यू नो, दे कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस, व्हिचएवर फॉर्म यू वुड लाइक टू टेक. तो वो फिर अपना भी निकाल लेते हैं, आपको भी आपके पैरों पे खड़ा कर देते
हैं. एंड दिस इकोसिस्टम इज, आई मीन, प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू ऑफ द मार्केट्स इंटरनेशनली, इज दिस बीन
ग्लोबली? तो सिस्टम ही यही है ना.
अच्छा,
ग्लोबल तो सिस्टम ही यही है. हमारे यहाँ भी बजवर्ड है, हमारे यहाँ भी इवॉल्व हो रहा है, राइट, हमारे यहाँ भी हुआ नहीं है. तो मेरा जो लेटेस्ट पैशन वो आया, वो एक्चुअली आया इधर से ही था. बिकॉज आई रिमेंबर मैंने MPhil में जब अपना प्रोग्राम किया, थीसिस किया, सो दैट वाज ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके,
वेरी इंटरेस्टिंग. ओके,
बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वेरी सून, बाय द टाइम आई वाज, यू नो, गिविंग माय थीसिस डिफेंस, आई वाज रियलाइजिंग कि यार इसका कोई स्कोप नहीं है. और उसमें हमारा टिपिकल माइंडसेट इन्वॉल्वड है, बिकॉज बाहर मुल्कों में आप हर चीज़ आउटसोर्स करते हैं. हमारे यहाँ वो कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो दे से दिस इज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, वी विल नॉट शेयर इट विद द कंसल्टेंट्स.
राइट,
व्हेन द माइंडसेट ऑफ द इंडस्ट्री इज लाइक दे डोंट वांट टू शेयर इट आउट विद यू, देन वेयर विल आई गो? आई विल एंड अप इन अ जॉब.
यस,
आई कैन नॉट हैव माई ओन कंसल्टेंसी. तो PhD में आते ही मैंने फ़ौरन चेंज कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिकॉज दैट वॉज द, यू नो, फोरसाइट के आगे नौकरियां नहीं होंगी तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी. जब एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो लेट मी डू समथिंग इन इट. तो फिर मैंने IOBM में ही मैंने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट किया. बाय द वे, माय टॉपिक हैज़ चेंज्ड 6 times ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक अराउंड 3 years नाउ. अब मैं अपने प्रपोजल डिफेंस के लिए गई हूँ, तो विद दैट आई हैव चेंज्ड माई टॉपिक 3 times. तो 3 times का मतलब यह है कि with the passage of time things have evolved, and IOBM was very receptive to these changes. And IOBM,
wonderful,
during this time, jab main pehli dafa aayi and I met the dean at that time, who is also my supervisor, Dr. Shujat, to maine unse kaha ke Dr. sahab, main hum thesis to kar rahe hain, magar main data kahan se lekar aaungi, मैं सैंपल कहाँ से लेकर आऊँ?
वैलिड, यस, वेरी वैलिड.
तो अभी तो कहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर भी नहीं है. बहुत कम इंक्यूबेशन सेंटर थे, IOBM में था उस वक्त. तो मैंने कहा कि यहाँ पे पूछते हैं कि हम कितने स्टार्टअप्स हैं. तो अब जो फिगर हमें मिली तो थोड़ा सा चुप हो गई ना. मैंने कहा नहीं, कहीं से डेटा तो कलेक्ट कर लेंगे.
ओके,
बिस्मिल्लाह करते. यू नो, नाउ इट्स लाइक 2019 में मेरा स्टार्ट हुआ था, बट देन कोर्स वर्क और वो सब अगर आप निकालें तो थीसिस के ऊपर मैंने 2.5-3 साल काम किया है. ड्यूरिंग दीज 3 years आई एस्टैब्लिश्ड अ कमेटी इन काटी, प्योरली डीलिंग विद इंक्यूबेशन एंड ऑरिक्स, जो भी आप मुझे बोर्ड में देख रहे हैं,
माशाल्लाह.
तो मैंने उसके साथ मैंने कहा ओके, आई नीड अ डेटा सेट, आई नीड टू गो एंड कलेक्ट द डेटा, सो आई नीड दीज कनेक्शन, तो वाई नॉट यूटिलाइज काटी. मैं उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थी, मैंने ये कमेटी बनाई, मैंने अपने साथ सारे अकेडमिया को ऑन बोर्ड किया, वेंचर कैपिटलिस्ट को ऑन बोर्ड किया, मैंने अपने साथ जितने प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स रन हो रहे थे, द NICs, द Aspire पाकिस्तान, I2I के थे और बहुत सारे थे, तो मैंने उन सबको अपने साथ ऑन बोर्ड किया. मैंने अपनी स्टार्टअप कम्यूनिटी खुद डिवेलप कर ली.
वंडरफुल.
Okay, and then you know I started working on that. So वो मेरा PhD साथ साथ grow करता रहा. And with that I also realized कि अब इनको क्या करना है, अब इनको क्या करना है. On and off इनको guide करते रहना, अपना portal की तरफ लेकर आना. हमारा portal अभी तक वैसे बना नहीं है, it's still in the ideation stage, but वो सारी कम्युनिटी को जो है ना वो एक स्टेज के ऊपर ले आई. टुडे इन 2024 व्हेन आई एम गिविंग माय प्रपोजल डिफेंस, आई अल्हम्दुलिल्लाह हैव एक्सेस टू अ बिग नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जिनसे मैं अपनी डेटा कलेक्शन कर सकती हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी वेदर सक्सेसफुल और नॉट, दे आर देयर. इट मीन्स दैट द इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ इवॉल्व्ड. यू नो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली. पहले हम स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करते थे कि इस्मीडा ने एक गाय दे दी, एक भैंस दे दी, तो वो जो है ना उसको स्टार्टअप कह दिया, राइट? बट टुडे उसको इंक्यूबेट कर दिया उन्होंने इंक्यूबेशन में. अब जो कुछ भी इंक्यूबेशन में गया है ना, तो वो स्टार्टअप है. तो टुडे वी टेल देम कि लिसन, दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, यू आर इंक्यूबेटिंग अ स्मॉल बिजनेस. सो इंक्यूबेटर्स कैन बी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, बट स्टार्टअप्स हैव टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस. लेकिन इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट. समथिंग अनदर थिंग विच आई एम वर्किंग ऑन इज कि पाकिस्तान के पास कोई एक डेफिनेशन नहीं है स्टार्टअप की. आपका स्टेट बैंक स्टार्टअप को किसी और तरीके से डिफाइन करता है, FBR किसी और तरीके से डिफाइन करता है, दूसरी बॉडीज किसी और तरीके से डिफाइन करती हैं. सो माई नेक्स्ट चैलेंज इज कि गिव पाकिस्तान वन डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप. इंडिया ने स्टार्टअप्स को डिफाइन कर लिया. जब उन्होंने डिफाइन कर लिया, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम अकॉर्डिंगली इवॉल्व किया. तो इकोसिस्टम के अंदर अब्रार, इट्स नॉट ओनली इंक्यूबेशन सेंटर्स दैट यू आर वर्किंग ऑन. आई इन माय ओन कंपनी ग्लोबल इनोवेट्रिक्स, आई हैव आल्सो डेवलप्ड अ पॉलिसी हब, अ रिसर्च हब, बिकॉज वी हैव टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि यार आप इनको टैक्सेस से छूट दें. जो 35 विंडोज़ हैं, मैं उनको बहुत महज़ब लफ्ज़ों में विंडोज़ ऑफ टैक्सेशन कहूँगी, अदरवाइज रियलिटी में तो वो कोई और विंडोज़ हैं. यस, 35 to 45 विंडोज़, उसमें फेडरल की मिला लें तो 40-45 विंडोज़ आ जाती हैं, जिसमें आपके लेबर रिलेटेड इदारे आ जाते हैं, ट्रेड लाइसेंसेस आ जाते हैं, EOBI है, SESI है, FBR है, एंड यू नो द लिस्ट गोज़ ऑन. तो वो पूरे 35-40 इदारे आप आ जाते हैं. जैसे ही आपका स्टार्टअप एक सर्टेन वैल्यू क्रॉस करता है, वो सारे इदारे उस पर हावी हो जाते हैं बाय लॉ. व्हेन इट शुड नॉट बी लाइक दैट, एंड इट हैपेंस बिकॉज यू हैव नॉट डिफाइंड स्टार्टअप्स. सो इट विल कंटिन्यू टू हैपन. इवन इफ द स्टार्टअप इज मेकिंग बिग मनी, इट इज नॉट सस्टेनेबल टिल इट क्रॉसेज एट लीस्ट 3 to 5 ईयर्स ऑफ बिजनेस. मे बी इट्स मेकिंग बिग मनी इन 6 months, बट आर यू श्योर ऑफ इट्स सर्वाइवेबिलिटी आफ्टर 6 months? जैसे ही वो 35 इदारे उस पर टूट पड़ेंगे, वो तो मर जाएगा. तो ये इकोसिस्टम की, इसके लिए मैंने एक पॉलिसी हब बनाया है, वेयर बाय वी विल बी एडवोकेटिंग पॉलिसी एंड डेफिनेशन फॉर स्टार्टअप्स. तो इकोसिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आप इंक्यूबेशन सेंटर खोल लिया, VC ले आए, उनको बच्चों को ग्रूम कर दिया, कहीं इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दिया. इट्स अबाउट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल. इट्स हाउ यू बिल्ड कनेक्शंस, हाउ यू लिंक देम टू द मार्केट्स, वेदर द मार्केट्स आर ग्लोबल, वेदर दे आर लोकल, एंड हाउ यू यू नो help them with the policies of the government, how you ask the government ki ji inko abhi aap free manufacturing spaces de, aap special technology zone sirf kitabon ki had tak na rakhe, practically implement kare un free technology zones ko. Because if I'm going to a technology zone to phir mere paas bahut sare aur benefits aate hain,
for sure, yes.
To lekin Pakistan mein practically wo benefits hai nahi. Aap technology zone mein jate hain, aap 1 crore ki zameen bechte hain. अब मुझे ये बताएं, ये स्पेशल SEZ में और टेक्नोलॉजी जोन आप उसको कह रहे हैं, STZ कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आप उसको, वहाँ पे 100 गज का प्लॉट मुझे 60 लाख से लेके 1 करोड़ में मिल रहा है. मेरी क्या औकात है एक छोटे से बिज़नेस की कि मैं जाके 60 लाख रुपये, 60 लाख रुपये इज़ लाइक यू नो समथिंग बिग फॉर मी. तो मैं वहाँ पे
सारी बिग एज अ माउंट एवरेस्ट फॉर यू.
एग्जैक्टली,
स्मॉल बिजनेस.
आई मीन सिर्फ आप मुझे जमीन मिलेगी ना 60 लाख में, उसके बाद उस पर कमरा भी मैंने बनाना है, फिर उसको मैंने इक्विप भी करना है. तो मैं एक छोटा सा स्टार्टअप, अगर महीने की अर्निंग मेरी 10 लाख रुपए भी अगर आप कर लें, तो मैं कहाँ से भाई उसको स्केल कैसे करूँगी. वन थिंग दैट इज हैपनिंग इन KPK, आई एम रियली रियली हैप्पी टू कोट दैट KPK में एक्चुअल एनवायरमेंट दिया गया है स्टार्टअप्स को. एक्चुअल इन्वायरमेंट हरिपुर स्टेट के अंदर, वहाँ पे उनको बाकायदा 5,000 रुपये महीने पे इंडस्ट्री दी गई है. मतलब बड़े बड़े कमरे हैं, दो दो कमरे 5,000 रुपये महीना.
दैट इज़ हाउ दे आर थ्राइविंग. यस,
दैट इज़ हाउ दे आर थ्राइविंग. वो एक पूरा उनको इन्वायरमेंट दिया है कि वहाँ पे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वहाँ से निकलते वक्त वो इस काबिल होंगे कि वो अपने आप को स्मॉल बिजनेस कह सके और टैक्सेस भी पे कर सकें और बहुत कुछ आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द बेनिफिट्स दैट दे आर गिविंग. लेकिन यहाँ पे तो हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं है. सो यू कैन सी केपी के ट्रांसफॉर्मिंग एंड दे आर एक्चुअली अडॉप्टिंग दैट यू नो इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स. मगर यहाँ पे इट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट के
I think whatever the best practices are, we must be able to, and
yes.
I think there's a lot to do with communicating that as well. Maybe at times regulators ke saath one needs to sit down and you know, how's that coming along, Maheen? Are you talking to a few regulators? Are you getting that positive feedback?
Yes, we are talking to the regulators. Abhi hamari kuch arse se activities government ki instability ki wajah se hold back hui bhi thi, but now that we have government, to because you know. पाकिस्तान में एक नई वेव और जो हमारी इंडस्ट्री में चली हुई है, लर्न टू लिव विदाउट अ गवर्नमेंट. आई मीन यू टॉक टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट और वो कहेगा कि लिसन प्लीज़ गवर्नमेंट को रख दे साइड में, अब आप बताएं हमने ऑपरेट कैसे करना है. अब ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी है. I don't know how you put it over here, but
this is gonna go viral, Maheen, जिस तरह आप बता रही हो.
But it's a ground reality.
This is reality. People, this is how businesses have to survive.
People are now separating themselves from the government because there is absolutely no stability in policies. Stability in the presence of the government itself. Aaj ek aa raha hai, kal ek ja raha hai, parson ek aa raha hai. I mean, how can you operate? Ek regular established business nahi operate kar sakta. Startup kaise karega?
Your survival is your own thing.
Halanki main bataun, startup phir bhi kar jate.
Yes.
इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो उस चक्कर में अभी फंसे नहीं होते, लेकिन स्केल नहीं कर पाते. बिकॉज द व्हेन द टाइम कम्स टू स्केल देयर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट.
दैट सपोर्ट इज काइंड ऑफ स्टिल मिसिंग.
दैट सपोर्ट इज मिसिंग. सो स्केलिंग के अंदर यस दे आर हैविंग इश्यूज. तो अब लेट्स सी हाउ इट गोस.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माहीन, हाउ डू यू मैनेज home with all this work and all the PhD?
Okay, work is passion, home is responsibility. So I have always believed in developing systems, and this is what I try and advocate to the companies where I work as consultant. You know, developing systems is very important. Agar aap poore apne mulk ko dekhe totality mein, to aapke Pakistan mein koi system nahi hai. अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ये बहुत मज़ेदार, इट्स अ वेरी फनी एग्जांपल एक्चुअली. आपके पास एक इदारा है स्टेफ्टा, सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. आपको पता है अगर आप स्टेफ्टा के बच्चे हायर करते हैं तो 2 से 3 साल तक EOBI आपको तंग नहीं कर सकता, सेसी आपको तंग नहीं कर सकता, आपको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी तंग नहीं कर सकती. आप उन बच्चों को आधी तनख्वाह के ऊपर काम करवा सकते हैं. आपके पास एक इंटर्नी ट्रेंड फ्री लेबर मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स नहीं है टू टेक एडवांटेज ऑफ सच अ बिग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट. बाहर मुल्कों में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनका अपना परमानेंट स्टाफ इतना सा होता है, इंटर्नीज इतने होते हैं, उनके यहाँ सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम पे सारी चीज़ ऑपरेट होती चली जाती है. एक आता है एक जाता है, उनका ऑपरेशंस नहीं रुकते, उनके सिस्टम्स वेल मेंटेन चलते रहते हैं. हमारे एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, हमने सिस्टम्स नहीं बनाए होते. सो आई बिलीव इन डेवलपिंग दीज सिस्टम, और यही सिस्टम मैंने अपने घर पर भी बनाया हुआ है. वंस यू आर ट्यून टू दैट माइंड सेट, तो फिर वो आपके घर में, काम में, हर चीज़ में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. माई सिस्टम इज़ माई मेड्स वुड कम अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आफ्टर फजर आई कैन नॉट स्लीप. I practically cannot sleep, so I call them. Aajo bhai, 9 baje tak, you know, all the entire house is done.
MashaAllah.
With raat tak ka khana bhi pak jayega, sare kaam ho jayenge, everything. Your laundry, your cleaning and everything,
so
kitchen
9 o'clock
and everything.
You guys are done.
9 o'clock I'm done. Aajkal to aur Ramzan hai, to waisi 8:30 baje tak farigh ho jate hain. So then, you know, I take a little break for myself. for my fitness and everything. And then 10 o'clock, I'm in office.
Wonderful.
So, फिर उसके बाद depends के जी कितना काम है. Because अब अल्हम्दुलिल्लाह, like I told you, your children are going to grow up and they start with their own lives. Then they don't really like you interfering. So I should have a life of my own as well.
Very important.
I can, you know, come back at 3, I can come back at 5, I can even, you know, come back home at 1. It's my thing. So, but once you are settled into a system, then your home is not disturbed and you are not disturbed.
Your message to the students who are actually going to be looking at your video, someone who's mashallah achieved so much, is so passionate about, you know, even giving back to the industry, giving back to the academia, right? What would be your tips?
Don't run after GPA. I mean, I never ran after it, frankly speaking. I love to study.
Understatement of the century.
I know. But, you know, असल में उस जमाने में काम सिर्फ पढ़ाई था और तो दूसरा हमारे यहाँ कोई काम नहीं
था. You were at the college magazine as well, if I remember correctly. You were writing for the college magazine.
I was.
Other than, you know, all
these activities. I've always been passionate about writing. लेकिन writing अब मुझसे काफी दूर हो गई है. तो वो मुझे दोबारा start करनी है, because उसके लिए आपको बहुत सुकून चाहिए होता है और अब वो वाला सुकून है नहीं जो पहले होता था. You know, like I told you, कि अब्बा के पैसे में बहुत सुकून होता है. तो you can experiment and you can write and you can be, you know, passionate about a lot of things. But students के लिए what I see now is that life has become somewhat more challenging than what it was for us. Challenging but more rewarding. Very rewarding. हमारे ज़माने में इतने rewards नहीं थे. हमें 100-200 रुपए भी मिल जाते थे तो wow, you know. आज 100-200 रुपए की कोई वैल्यू भी नहीं है. समोसा भी नहीं आता शायद अच्छे वाली जगह से, राइट? सो यू नो, थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दे हैव बीन. अब आपको अपनी फोरसाइट बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी डायनामिकली. थिंग्स आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी फॉर अस. यू नो, यू एंड आई वुड हैव बीन आउटडेटेड अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते वक्त के साथ. Students are running away from the degrees. They are like ke skills mil jaye, short money, quick money. IT mein chale jao, aaj hum 60,000 se shuru karte, ek saal ke andar andar hum 4 lakh ki job pe honge. Pakistan mein nahi honge, America mein honge, Canada mein honge, UAE mein honge, aur wahan ka pura luxurious life enjoy kar rahe honge. This is what is actually happening and how the students are thinking. But pause for a while, stop for a while. अगर आप स्किल्स में लग गए और आपने अपनी डिग्री छोड़ दी, क्योंकि स्किल्स का मैं अगर इसको आम तरीके से कहूँ, शर फैलाया गया है, राइट? एक शर है. स्किल्स कुछ भी नहीं है.
दे माइट बी टेम्पररी एज़ वेल.
दे आर वेरी टेम्पररी. स्किल्स क्या थी? अबरार आप और मैं जाते थे, एक स्टॉल लगाते थे, CBM में एक इवेंट कंडक्ट करते थे, हम अपनी स्किल्स पॉलिश कर लेते थे. वही था ना कि यू नो, जिस वो क्या कौन सी इंट्रा
पर्सनल सेलिंग
एंड यू नो दोज स्किल्स जो हम अपनी CV पे भी लिखते थे बड़ी बड़ी. मगर टाइम्स हैव चेंज्ड. अब स्किल्स आपको क्या कहते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस होल्डर हैं, दैट्स अ स्किल. आपने कोर्सेरा से कुछ कोर्सेज करे हुए हैं, दैट्स अ स्किल.
यू कैन कोड अ कपल ऑफ लैंग्वेजेस, दैट माइट बी अ स्किल सेट.
दैट्स अ स्किल. सो द स्किल सेट्स हैव आल्सो चेंज्ड.
या
मगर मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्ट टर्म मनी. आप मुझे अमेरिका की कोई एक यूनिवर्सिटी बताएं जो अपने बच्चों को कहती हो कि स्किल्स ले लो और डिग्री छोड़ दो. You have to understand that you have been drifted away. You have been actually thrown out of the R&D world where you could progress and you could grow in real terms. Agar aaj main PhD kar rahi hoon, to koi uska reason hai, right? Mera PhD globally kitna acceptable hai, I'm least bothered. But the point is ke I have a mind where I can do some research and development, where I can give something new to the society. Kyunki dekhe, jis jagah pe innovation nahi hoti, jis jagah pe R&D nahi hota. Ab ye R&D ye zaruri nahi hai ki ye business school hai to yahan R&D nahi hogi. Nahi, you can come up with new theories on human resources, you can come up with new theories on entrepreneurship. But you have to have a R&D mindset. Zaruri nahi hai ki ek chemical naya ijaad ho jaye. अब आप ये देखिए, टेक्निकली आपकी कंट्री के साथ हुआ क्या है. टेक्निकली आपकी कंट्री के साथ आपसे R&D छीन ली गई है. आज आपके पास इंजीनियर्स ख़त्म हो गए, आपका बच्चा साइंस से हट गया है. आज आपका जो इंजीनियर है वो HVAC सिस्टम, ये जो आपकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसका एक ऑपरेटर बन के रह गया, एक आपका इंजीनियर, राइट? बिकॉज यू हैव बीन ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम योर ओन इंडिजिनस R&D. You have not produced professors who were to the caliber where they could compete globally.
As a country, innovate or could develop these things.
As a country, yes. आप पीछे आ गए. चाइना स्टार्ट हुआ था कॉपी कैट से, राइट? हम कहते थे चाइना कॉपी, चाइना कॉपी. टुडे चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड एंड हाईली प्रोडक्टिव R&D सेंटर्स. आज आपके तमाम पेटेंट्स जो हैं वो चाइना में मिलते हैं, अमेरिका में भी इतने नहीं मिलते आपको जितने चाइना में मिलते हैं. आज वहाँ पे आपको इनोवेशन मिलती है. सी द हाउ द नेशन हैज़ ग्रोन. तो अगर आप प्लीज़ 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 डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स. थोड़ा सा तकलीफ दे है रास्ता, आई अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, लेकिन प्लीज़ अपनी फोरसाइट डिवेलप करें. जब भी प्लानिंग करें अपने बारे में, आज से 10 साल 15 साल आगे का सोच के करें. ये चीज़ हमारी यूथ में मैं बहुत मिसिंग देख रही हूँ, एंड इट बॉदर्स मी, इट हॉन्ट्स मी कि हमारे बच्चे आज से 10 साल बाद का सोच नहीं सकते. हमारे बच्चे R&D की तरफ जाने का जहन नहीं रखते. हमारे पास टेक्निकल लोग ख़त्म हो गए हैं. हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास IT वाले भी हैं. तो बताऊँ आपको, जब ये ग्लोबल ओपनिंग्स आती हैं तो वो टेक्नीशियन के लिए पाकिस्तान को देखते हैं. आपके पास IT के टेक्नीशियंस हैं, आपके पास IT एक्सपर्ट्स नहीं हैं, आपके पास AI एक्सपर्ट्स नहीं हैं. वो AI का कोर्सेरा से एक कोर्स करके स्किल लेगा और कहेगा वाओ, तुम बाहर जाओगे ना, वहाँ पर जाके बस फिर एक टेक्नीशियन बन के रह जाओगे. आप सिर्फ वहाँ पे एक सैलरी के ऊपर आप एक टेक्नीशियन बन के रह जाओगे. बहुत कोई तुम में से तीर मार लेगा तो अपना बिजनेस शुरू कर सकेगा.
दैट लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज यस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट,
एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वो चीज़ें तो सारी अपनी जगह है कि बी ऑनेस्ट, बी एथिकल. आई मीन इट साउंड सो स्वीट दैट यू आर हार्ड वर्किंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दैट पर्सनल सेलिंग वाला स्टफ. आप प्रोफेशनल उसमें आ जाइए. आज से 10 साल का सोच के अपनी डिसीजंस लीजिए, अपने अंदर R&D कैपेबिलिटीज़ डेवलप करिए, एंड ट्राई टू गिव समथिंग बैक टू दिस सोसाइटी इफ़ यू कैन. वैसे तो मैं भी कहती हूँ कि आप ह्यूमन, आई मीन पहले मैं कहती थी ब्रेन ड्रेन, लेकिन अब मैंने ब्रेन ड्रेन के लफ्ज को स्विच कर दिया है मैन पावर एक्सपोर्ट से, राइट? बट मुझे, जब मैं मैन पावर एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्नीशियंस भेजती हूँ जो कि वहाँ पे बाहर सिर्फ लेबर क्लास बन के रह जाते हैं. इंडिया के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर भी PhD है, और आज सारे CEOs किसके हैं? इंडिया के हैं.
They've done something very good.
बिल्कुल, आप ये सोचिए ना कि वो नेशन ट्रांसफॉर्म कैसे हुई. ऐसे ही आपने ट्रांसफॉर्म होना है. शॉर्ट टर्म मनी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, स्किल्स, प्लीज़ स्टॉप इट, कम आउट ऑफ इट, गो फॉर PhD. आज आप PhD का सोचोगे तो कुछ अच्छी R&D चीज़ आप कर लोगे, कोई इनोवेशन कर लोगे, कहीं बाहर मुल्क भी जाओगे तो किसी टॉप की पोजीशन पे होगे. तो यू नो, यू विल ग्रो नॉट ओनली पर्सनली, बट योर कंट्री विल ऑल्सो ग्रो विद यू.
सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग,
यस,
यू नीड टू गिव इट टाइम.
Yes.
What are the other tips that we can offer to the students?
You have to go for a degree. Don't leave your degree for a vocational skill, you know. Don't leave your degree.
So proper certified degree is something one must go for.
Proper certified degree aapke paas honi chahiye.
Courses are also good.
Courses are good. After your degree, go and take your courses. Aap license lein, courses karein, aap bahut kuch karein, magar apni degree ke baad karein na.
That's very important.
डिग्री छोड़ के आप ना करें,
राइट?
जो आजकल ट्रेंड आ रहा है वो ना करें. डिग्री छोड़ के नहीं करें, डिग्री के साथ करें.
A lot of students come around like, sir, we don't have that experience. And obviously you learn from your experience. Bad experiences gives you a lot of
this is why I'm saying na ki ek startup ka failure bachcha industry ke liye zyada maane rakhta hai bajaye ek छोटी मोटी इंटर्नशिप करे हुए. मैं HSC के साथ भी बाय द वे काम कर रही हूँ, और अभी मेरी नेक्स्ट मीटिंग HSC के साथ ही है. तो उनको 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 मैंने सजेस्ट कर रहा है उनको कि आप सिस्टम चेंज करें. आप जो है ना, ये इंटर्नशिप्स के बजाय अगर बच्चे आपके पास इंक्यूबेट हो रहे हैं, आप उसको भी इंटर्नशिप काउंट करें. उसके मैकेनिक्स निकालें कि बच्चे की इवैल्यूएशन कैसे होगी, जो कि एक स्टार्टअप के साथ इन्वॉल्व है. इंटर्नशिप में तो इवैल्यूएशन बड़ी आसान होती है ना. वो वहाँ का एक मैनेजर फॉर्म भर देता है, एक आपका मैनेजर फॉर्म भर देता है, बच्चे की इवैल्यूएशन हुई, ख़त्म. मगर उसका कोई आउटकम नहीं है. आप एक बच्चे को स्टार्टअप करने दें, फेल होने दें, वहाँ पे उसकी इवैल्यूएशन करें, उसके डायनामिक सेट करें, उस सिस्टम को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें. I mean, your entire system needs overhauling change.
And is that happening?
कुछ universities ने शुरू किया है, इस्लामाबाद की, again the federal capital effect.
Okay. So
let's you know fight together के you can have a second capital city Karachi. यहाँ पे भी बहुत कुछ आ जाएगा क्योंकि वो focus और resources accordingly आपको मिलते हैं जब आप federal capital होते हैं.
Mahin, your suggestions for the alumni?
आपका interaction बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, but थोड़ा सा जो है ना, I believe, personally believe के alumni should pull these new students up. You are at the positions, you are at the role where you have strong bonds with this institution. Like किसी भी तरीके से ना यहाँ के बच्चों को हमें pull करना है ऊपर, and we can do that. If we are abroad, we can find good opportunities for them. If we are doing something locally, तो इनके इनको जो है ना हम अच्छी जगह पे अगर internships करवा सकें, या इनको हम मैं वैसे personally internships पे believe नहीं करती. अगर हम इनको अच्छा startup इनको दे सकें, अगर हम इनको अच्छा जो है ना मतलब इनके businesses कुछ शुरू करवा सकें, इनको वो opportunities और exposure हम दे सकें, तो that will be great for the existing students and a big service as alumni to this institute.
We would want to talk about and take some quick answers from you.
Okay.
The objective is to take your top of mind on these particular points. If you're ready.
Sure.
Your favorite organization.
Okay, my favorite organization is my organization, but I can do whatever I feel like doing.
Values.
Okay, values is forward thinking.
Your favorite subject at IOBM.
Entrepreneurship, my PhD.
Your favorite instructor?
I really appreciate everyone here. I mean, I'm a product of IOBM since my bachelor's, master's, MPhil, and now PhD.
MashaAllah.
And my favorite instructor, all the instructors have always been really nice. I mean, I have enjoyed all of them.
Future?
Future is AI.
Your favorite customer?
GSK.
Innovation?
Innovation, okay, it's about IoTs that you're talking about. I mean, Pakistan seriously need IoTs. We need transformation with our industrial processes. We need transformation in our thinking. We need transformation at every step. We are not even using data as a corporate world. हमें पता ही नहीं big data analytics है क्या. So, I mean, you have to be, you know, inculcating that IoTs in everything, IoT culture. आपके पास dashboards नहीं होते, dashboard is an IoT. आपके पास devices नहीं होती, so you know you have to be really advanced with that.
Well taken. Okay. Disruption.
Since technology is on my head, so again you know.
Top of mind वो चल रहा है.
Top of mind वही चल रहा है, because future वही है. मैं वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत जल्दी जाते हुए देख नहीं रही. Because हमारे यहाँ एक तो वो culture बहुत जर्क्स के साथ, बहुत ब्रेक्स के साथ इवॉल्व हो रहा है, और जो इवॉल्व हो रहा है वो टेक्नीशियन की फॉर्म में बाहर जा रहा है. वो अगर एक हायर लेवल के ऊपर बाहर जाए ना, तो हमें खुशी होती है, क्योंकि जब आपके जो मैन पावर है वो वहाँ जाके कुछ अच्छा सेट करती है, तो वो यहीं के लोगों को बुलाती है. आपका रूल होता है पूरी दुनिया में. लेकिन अगर आप एक टेक्नीशियन के तौर पर चले जाते हो, तो फिर आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो ना, उसका आपको फ़ायदा हो रहा होता है ना मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता है.
We are missing those CEOs, we are missing those leaders.
We don't have those leaders.
Champions of those organizations and those products, like unicorns is what I think we are missing.
Yes, we are missing those.
And I think the only way that we can do it is do it the right way.
Yes.
Yeah, develop that. My last sweet success point, excellence.
Excellence is when you achieve excellence at home with your family, then you are a happy person and you can achieve excellence everywhere.
Wonderful. So if you're not at peace, then definitely.
Obviously.
One of the tangents.
I really enjoy. एक ज़माना था जब सिवाय मेरे हस्बैंड के हम सारे बच्चे और मैं मिलके एग्जाम्स दे रहे होते थे. So you know, I believe in enjoying every phase of life. When my son's friend called me auntie for the first time. I mean, I enjoyed that as well. क्योंकि पहली दफ़ा कोई आंटी कहे तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, अगर आज कोई ना कहे तो बहुत अजीब लगता है. So, you know, enjoy every phase of life and you'll achieve excellence with your profession as well.
Mahin, thank you so much for your time.
Abrar.
We wish you the very best of luck. Thank you so much. Take care.
And have this.